गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरी नाम जपते हुए। Transform the world by transforming yourself. ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है, हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होंगे, नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। आप सभी का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। आप सभी का आज के लाइव सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी डिवोटीज हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। जैसा कि आपको पता है कि निखिल जी के निर्देशानुसार हमने सरल भगवद गीता सार रूप का जो है वो आस्वादन ले रहे हैं बहुत से डिवोटीज के माध्यम से, और बहुत से डिवोटीज ने सबसे पहले हमें गोलोक एक्सप्रेस के संगठन के बारे में बताया, फिर मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया। तो अब जो है वो कारमा शुरू हो गया है। व्हाट इज भगवद गीता हमने समझा, अब हम समझ रहे हैं जो हर चैप्टर का जो भगवान श्री हरि ने हमें भगवद गीता बताई है, उसमें हम हर चैप्टर का सार समझ रहे हैं। और पिछले जो चैप्टर थे वो सेकंड चैप्टर था, और रोशन जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें सेकंड चैप्टर का सार हमें समझाया, और आज हम समझेंगे थर्ड चैप्टर का सार। भगवान की वाणी को ग्रहण करते हुए हम भगवान श्री हरि को नमन करते हैं ताकि वो हमारी बुद्धि में बैठे और हम उसको ग्रहण कर पाए, और अपने गुरुओं को वंदन करते हैं ताकि वो हमारी मदद करें और हमारे में अहंकार ना आ पाए और हम उस ज्ञान को सरल तरीके से अपनी बुद्धि में ग्रहण भी कर पाए और अपने मन को स्थिर भी कर पाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का सार, जिस चैप्टर का नाम है कर्म योग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्म योग को। प्लीज पढ़िए।
अध्याय 3 कर्म योग। पॉइंट 1, भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनेंगे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बहुत सुंदर है, कर्म योग। कर्म योग यानी कि कर्म करना, कार्य करना। तो हम सबको इस संसार में आए हैं, तो सबसे पहले भगवान ने हमें समझाया है कि कर्म की महानता है। तो बहुत सारे डिवोटीज को ये लगता है कि भगवद गीता है या फिर भगवान का पथ है तो घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। नहीं, हमें भगवान कर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कर्म किस तरीके से करना है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। कर्म कैसे करना है? कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। कर्म यानी कि कार्य, योग यानी कि भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़कर कार्य करने को कर्म योग कहा गया है। भगवान से जितना हम कनेक्शन स्ट्रांग रखेंगे और उस भाव से कर्म करेंगे कि जो भी हम कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। इस संसार में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो अपने लिए कर रहा है, अपनी सेंसेस को खुश करने के लिए कर रहा है। जैसे एक माँ खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए, तो वो उसके अंदर भाव क्या होता है, मेरा बच्चा है, मैंने अच्छे खाना बनाना है, मैंने अपने घर वालों को खुश करना है। वही अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए तो फिर हम बंधन में बंध गए। है तो वो कार्य करना है, लेकिन ये क्या कार्य है? ये अच्छा कार्य है। एक माँ अपने बच्चे को खाना बना के दे रही है, अपनी फैमिली को दे रही है, अच्छा कार्य है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस इससे जुड़ जाती हैं, इससे सकाम कर्म बोला जाता है बेसिकली। सकाम कर्म के माध्यम से क्या हो जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है। जैसे कल को आपको ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, आपने अपने पति को बहुत अच्छे से देखा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, फिर वो बंधन का कार्य बन जाती है इसी संसार में। ये कोई आफ्टर डेथ की बात नहीं हो रही, पहले तो हम इसी संसार के बारे में सोचेंगे ना, इसी संसार में हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। फिर कल को आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, मान लीजिए हम बीमार हो गए हैं, हमारा कोई देखभाल अच्छे से ना कर पाए, तो हमें क्या लगता है कि मैंने सारी उम्र इनका किया और इन्होंने मेरा ध्यान भी नहीं रख पाते, ये 3 दिन ध्यान नहीं रख पाते, तो ये क्या है, ये सकाम कर्म है। तो ये इस चीज से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम बंधन से मुक्त होगे। जो संसार में हम बंधन पकड़ के रखते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे और तुम मोक्ष की ओर जाओगे। तो अपनी नेगेटिविटी, अपने अंदर कोई एक्सपेक्टेशन हावी कर लेनी, काम क्रोध लोभ मोह, इससे मुक्त होना, यही तो मुक्ति है, इस संसार में मुक्ति है। तो जो भगवान के लिए कार्य करेगा फिर उसको अंदर से ये चीजें नहीं पकड़ेंगी, उसको होगा कि मैंने भगवान की सेवा भाव से कार्य करना है, मुझे भगवान इस सृष्टि पे लेके आया है और भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, वही मेरे उद्धार का कारण बनेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि अच्छे कर्म बंधन का कार्य है, ठीक है, और बुरे कर्म क्या है, वो भी बंधन का कार्य है। बुरे कर्मों में तो कोई डाउट ही नहीं है ना, अगर आप आपकी एक माँ की ड्यूटी है अपने बच्चे को खाना देना, अगर वो नहीं दे रही तो वो बुरा कर्म, क्यों नहीं दे रही, वो बुरा कर्म है। तो सबसे पहले तो ये समझना है हम कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि जो ह्यूमंस की टेंडेंसी है वो बनी ही ऐसी है कि वो बैठा हुआ भी कर्म कर रहा है मन वचन और शरीर से, वो तो करेगा ही करेगा। तो लेकिन हमने कर्म करने हैं, कर्म कैसे करने हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अदरवाइज वो बंधन का कार्य बन जाएगी। पहला तो बंधन का कार्य होगा कि अच्छा कर्म किया तो बंधन का कार्य, बुरा कर्म किया तो फिर वो तो बंधन का कार्य है ही, वो आपको दुख देगा तकलीफ देगा। अब आफ्टर डेथ समझते हैं कि आफ्टर डेथ क्या है। आफ्टर डेथ क्या होगा कि जब भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि अगर कोई अपने कार्य को गलत तरीके से करता है, पहले तो उसको नरकों में भोगना पड़ेगा, वो तो बंधन का कार्य हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमने बचपन से ही सुना हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है उस जीव को जिसने बुरे कर्म किए हैं। फिर अगर मान लो उसने अच्छे कर्म भी किए हैं तो क्या हो जाएगा अच्छे कर्म से। हम सभी कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, अपनी ड्यूटीज करो, वही काफी है। ड्यूटीज भी अकेली करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे तो उसमें अहंकार आ जाता है, अगर आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो तो हो जाता है ना मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मतलब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो बंधन का कार्य हो गया। तो फिर ये आफ्टर डेथ आपको अच्छे होने का परिणाम मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे लोकों में, स्वर्ग लोक, जो कि हम सोचते हैं कि हमने स्वर्ग लोक जाना है, स्वर्ग लोक हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, भगवान स्वर्ग लोक भेज देंगे, इवन ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है तो फिर ब्रह्म लोक भी चले जाएंगे, होगा क्या। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर जाएगा उसको फिर हिसाब किताब करने के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याध फिर है, ठीक है। तो अच्छे कर्म भी करेगा फिर उसको नीचे आना पड़ेगा, तो फिर वो परमानेंट घर तो गया ही नहीं। परमानेंट घर कहाँ है, भगवान का धाम, वो परमानेंट घर है। जो भी इंसान अपने उद्धार के लिए कार्य करना चाहता है उसको अपने परमानेंट घर जाना है, और परमानेंट घर कैसे जाएगा, जब वो भगवान के लिए कार्य करेगा। जिसके लिए कार्य करेगा उसी के पास तो जाएगा, अगर संसार के लिए कार्य करेंगे सीधी सी बात है तो संसार के हो जाएंगे, अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान के हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम परमानेंट होम वापस जाएंगे। तो हमने जो भी संसार में कार्य करने हैं वो भगवान के धाम में जाने के लिए कार्य करने हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म करेगा वो भी बंधन का कार्य है, जो बुरे कर्म करेगा वो भी बंधन का कार्य है। बंधन से मुक्त होना है, इस संसार में भी बंधन से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो भगवान के लिए कार्य करो, और आफ्टर डेथ भी उसका फायदा है और अभी भी उसका फायदा है, कोई अलग नहीं है आफ्टर डेथ। आपको ये नहीं है कि आज आप कुछ अलग हो या आफ्टर डेथ आप कुछ अलग हो जाओगे, जो स्थिति आपने आज प्राप्त की है आफ्टर डेथ भी आपको वही स्थिति प्राप्त होगी। हरि बोल, नेक्स्ट पढ़िए प्लीज।
हरी हरी बोल। पॉइंट टू, भोग लगाकर प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो पाप ही इकट्ठा करते हैं। हरी बोल।
भगवान यहाँ पे क्या हमें महत्व बता रहे हैं, हरे कृष्ण, क्या बता रहे हैं कि हमें भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भोग लगाने का मतलब है कि जो भी आप अपने घर में जो भी आप खाते हो, तो अगर आप भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो तो उसमें पाप वास करता है। सबसे पहले पाप वास तो इसलिए करता है क्योंकि देखिए भगवान ने हमें दिया है, सब कुछ भगवान का है, तो अगर हम उनको ही नहीं अर्पित करेंगे तो पाप ही खा रहे हैं, घर के बड़े हैं, उनको बुजुर्ग हैं, उनको नहीं ऑफर करेंगे तो पाप ही खा रहे हैं। दूसरी चीज, जब जो अन्न आपके घर में आया होता है, पता नहीं कितनी कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, किसानों के पास होता है, बहुत तरह की उसमें नेगेटिविटीज होती हैं, तो जब आप उसको ग्रहण करोगे वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर जाती है। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर हम चाहते हैं हमसे पाप कर्म ना हो तो अपने अंदर पाप को भेजना नहीं है, तो जो भी पाप खाएगा उसकी प्रवृत्ति पाप की ही होगी। प्रवृत्ति पाप की मतलब उसे पापमय एक्टिविटीज होंगी, तो मन जो है वो चंचल रहेगा। तो हम ये तो हमेशा ही सुनना चाहता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद की फुल फॉर्म होती है परमात्मा के साक्षात दर्शन। अगर आप परमात्मा के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो पापमय अन्न खाकर नहीं होंगे, वो भक्तिमय प्रसाद खा के होंगे। और जो भी आपके घर में आ रहा है उसको भगवान को ऑफर कर ही हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम पात्र नहीं है इस संसार में किसी भी चीज को लेने के लिए। जो भी संसार में है वो भगवान का है, इवन ये शरीर भी है वो भी भगवान का ही तो है, तो हम इसको भोग रहे हैं, तो हम भोगता नहीं है, भोगता भगवान है। हम क्या है, हम सेवक है। तो भगवान को ऑफर करते हुए हमें सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। उसके कुछ नियम और सब कुछ होते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए, जैसे तुलसी का पत्र उसमें डालकर आप भोग लगाइए। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप जो है वो भगवान को ऐसे नहीं डायरेक्ट ऑफर करके खा सकते, तो आपको मानसिक तौर पर, अगर आप बाहर हो तो मानसिक तौर पर भगवान को नमन कर जो है वो फिर ही अन्न जो है वो ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज आपके अंदर पाप वास करेगा। और हम कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर पाप वास करे, है ना। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अब जैसा पानी वैसी वाणी का क्या है, जो आप जल ले रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है भगवान को अर्पित कर ही जो है वो जल ग्रहण करना चाहिए। किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि हर बार ही भगवान को ऑफर करूं, नहीं, कुछ अलग तरीके भी होते हैं। जैसे आपने एक गिलास पानी का जो है वो पानी को आगे, पानी का भगवान को ऑफर कर दिया, सुबह वही आपके वाटर कूलर में आपने डाल दिया, तो सारा दिन आप वो पियो। अदरवाइज नहीं, तो जब भी आप जल पीते हो तो आप जो है आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करो और उसको ग्रहण करो। तो बहुत ही ये सिंपल तरीका है, और भगवान का जितनी बार भी आप जल पियोगे आपको भगवान का स्मरण भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी। तो अगर हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा अंतर का जो अंदरूनी है वो क्लीनिंग होती है उसकी। तो ये दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो भगवान ने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया। हरी हरी बोल। नेक्स्ट वीडियो प्लीज।
हरी हरी बोल। पॉइंट 3, जो लोग शास्त्रों की अवहेलना कर इंद्रियों भोगों में लगे रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। हरी बोल।
सिंपल सी बात है, हरी हरी बोल। जो मनमाने ढंग से अपना जीवन जीते हैं, हम हर जीव को आदत पड़ी हुई है मनमाने ढंग से जीवन जीने की, क्योंकि हम पापमय अन्न खाते हैं, और हमारे जो कलयुग में जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो वैसे ही लो हो चुकी है, मानसिकता जो है वो बहुत ही लो हो चुकी है, तो हम मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं। तो हमें जीवन जीना है शास्त्रों के आदेशानुसार। तो जैसे कोई भी व्रत रखता है, कुछ भी एक्टिविटीज कर लेता है ना, क्यों? क्योंकि मनमाने ढंग से जीवन जीना चाहता है। कोई भी अगर हम जो जैसे अभी भोग की बात की है, तो कोई क्या मन नहीं करता भोग लगाने का ना, क्योंकि संसार में इतना लिप्त है मन, तो व्यक्ति के क्या फायदा भोग लगाने का, ऐसा तो ये तो अंधविश्वास है, मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ। तो शास्त्रों की अवहेलना होती है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं शास्त्र, एक तो होता है कि आप हमारी कैपेसिटी कम है लेकिन हम करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं। वो बंदा जो है वो एटलीस्ट जो है वो प्रयास तो कर रहा है, और भगवान उसके प्रयास को देखते हैं और उसको इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। लेकिन जो अवहेलना करता है, बिल्कुल ही ऐसा है कि वो डिसरिस्पेक्ट करता है, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं भोग लगाने को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शास्त्र को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति से दूर भी रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो है वो मनमाने ढंग से जीवन जिएगा तो उसका पतन नहीं होता है। तो वो ये ना कहे कि मुझे एंग्जायटी क्यों आती है, वो ये ना कहे मुझे डिप्रेशन क्यों आता है, वो ये ना कहे कि मेरे जीवन दुखों से क्यों भर रहा है, क्योंकि उसने ये खुद चयन किया है। क्योंकि मनमाने ढंग से जीवन जीने का मतलब है दुखों का चयन करना, और जो व्यक्ति दुखों का चयन कर रहा है फिर उसको जो है वो शांति की तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं बुद्धि अगर मेरे में दिव्यता तुम लेके आओगे, बुद्धि मेरे से जुड़ी हुई है, तब तुम्हारी बुद्धि दिव्य होगी, मन शांत होगा, और तभी तुम हैप्पीनेस को फील कर पाओगे। अगर हम भगवान के साथ जुड़े नहीं हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, शास्त्रों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में दुख और मिजरीज ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। तो मनमाने ढंग से जीवन नहीं जीना, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जीवन जीना है, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम हर चीज को समझ पाए। हर जीवन को जीने का एक तरीका होता है, तो जीवन जीने का तरीका हमें भगवत गीता सिखाती है और हमें उसका अनुसरण करना है। हरी हरी बोल। नेक्स्ट
पॉइंट,
हरी
बोल पॉइंट 4, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने से मनुष्य को निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। हरी बोल।
हाँ, तो भगवान ने तरीका बताया कि भगवत गीता भगवत प्राप्ति कैसे होती है। भगवत गीता में बताया है भगवान ने क्लैरिटी से कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। सब चाहते हैं ना भगवत प्राप्ति करना, तो भगवान ने कहा है कि तुम्हारे कर्मों के माध्यम से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इंटेंशंस कैसे हैं वो मैटर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने जो है वो भगवान के लिए कोई कार्य करना है तो अपने कर्मों का परित्याग करना है, ये तो मन को ठगने वाली बात है, ये मनमाने ढंग से जीवन जीने वाली बात है, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, जो हमने मिसकंसेप्शन में भी किया है। तो भक्ति करते हुए, जैसे आप भक्ति करते हुए भी आप जो है वो अपना जो है उद्धार कर सकते हो भक्ति करते हुए, और कर्मों को किस तरीके से निर्वाह कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी ड्यूटीज करनी है, एक मदर है वो ड्यूटी करती है अपने बच्चों के लिए, तो अगर वो उसके अंदर ये इंटेंशन है कि मेरे बच्चे में भी कृष्णा वास करते हैं और मैंने भोग लगाकर ही जो है भगवान का फिर अपने बच्चे को देना है, वो मेरा बच्चा नहीं है वो भगवान का बच्चा है, इंटेंशन में कमी आ गई ना। सेवा तो वो भी अपने बच्चों की कर रही है और संसारी माँ भी कर रही है, फर्क क्या है, इंटेंशन का फर्क है। उसको उसमें भगवान को खुश करने के लिए वो कार्य कर रही है कि मेरे बच्चे में भी कृष्णा वास करते हैं, कृष्णा को भोग लगाकर ही वो ग्रहण करे ताकि वो भगवान की शरण में लगे। तो भावों में परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो वो कृष्णा की ही सेवा कर रही है, वो किसी इंसान की सेवा नहीं कर रही है, वो कृष्णा की ही सेवा कर रही है। हर जीव में तो कृष्ण है, ठीक है, तो वो कृष्णा की, आपके घर में गेस्ट आया है, तो एक डिवोटी ऐसा नहीं है कि आपके घर गेस्ट आया और वो दुखी हो जाए, नहीं, वो डिवोटी नहीं है। आप उसमें भी वो भगवान का वास देख सकता है कि आप उसको प्रसाद खिलाओगे क्या उसके मन की प्रवृत्ति बदलेगी, नहीं, आप उसके साथ उसको प्रसाद खिलाओगे उसकी सेवा करोगे तो आपके मन की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। तो सेवा भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है अपने आप को दास मानते हुए वो अपने उद्धार का कार्य भी कर सकता है। अब एक व्यक्ति ऑफिस जाता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए और एक व्यक्ति ऑफिस जाता है ताकि मुझे भगवान ने ये ड्यूटी दी है, मैंने भगवान की खुशी के लिए करना है, तो इंटेंशन में फर्क आ गया, कोई कार्य में फर्क नहीं आया। तो ये तो बिल्कुल ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अपने कार्यों का परित्याग करना पड़ता है, जो आप रोजमर्रा की ड्यूटीज करते हो उसका परित्याग करना पड़ता है। ये व्यक्ति अपने मन को ठग रहा है, हमने सिर्फ अपने कार्यों में कृष्णा को एड ऑन करना है, दिस इज भक्ति, वेरी सिंपल। और जो डिस्ट्रक्टिव टाइम बचता है तब माला करनी है, माला इसलिए करनी है ताकि हमें स्ट्रेंथ मिले और जो भी हम एक्टिविटीज करें वो भगवान को समर्पित करके करें, क्योंकि जब आप माला नहीं करोगे, चैंटिंग नहीं करोगे, तो वो आपके अंदर आप समर्थ्यवान हो ही नहीं सकते कि ये सोचने के लिए कि मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ये कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है, अगर आप माला जाप नहीं कर रहे हो तो आप भगवान से कनेक्टेड नहीं रह सकते, अगर आप जो है साधना नहीं कर रहे हो तो भगवान से कनेक्टेड नहीं रह सकते। तो साधना करनी है, जो हमने सत्संग साधना सेवा समझा है, साधना करनी है और सेवा करनी है जिसके माध्यम से हम जो कोई भी अगर अपने घर में भी सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान से कनेक्टेड होकर करें और सेवा भाव से करें, वही हमारे उद्धार का कारण बनेगी और कुछ नहीं, ठीक है। हरी हरी बोल।
पॉइंट 5, श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे कार्य करता है सामान्य मनुष्य उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। हरि बोल।
देखिए हरि बोल, तो श्रेष्ठ पुरुष जिसका अनुसरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठ पुरुष वो है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। हमारी लाइफ में अलग अलग हमारे जो है होते हैं इंस्पिरेशंस, ठीक है, किसी की इंस्पिरेशन होगी उनकी मदर, किसी की इंस्पिरेशन होगी उनके फादर, किसी की इंस्पिरेशन होगी उनके टीचर्स, किसी की इंस्पिरेशन होगी उनके गुरु, किसी की इंस्पिरेशन हो गए उनके जो मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में उनके जो कोच हैं या फिर स्पोर्ट्स में जिनको वो फॉलो करते हैं वो कैसे करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हर किसी के एरिया ऑफ कंसर्न में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है और जिसको वो देखता है कि मैं ऐसा बनना चाहूंगा। तो हर किसी का एरिया ऑफ कंसर्न अपना अलग अलग होता है. जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं एज अ पेरेंट, तो हमारे बच्चे अनुसरण करते हैं हमें. बड़े भाई की बात करो, घर में बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई बहन आपका अनुसरण करते हैं, पेरेंट्स का और भाई बहनों का तक का अनुसरण करते हैं. तो हर जीव किसी ना किसी को इंस्पायर कर रहा है इस सिनेरियो में, हर जीव. तो हमें भगवान कह रहे हैं कि जो आपको देख रहे हैं उनको कैसा बनना है, जैसे आप हो. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये हमने सुना है. तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा मैटर करती हैं, रादर कि आप किसको कितना बोल रहे हो. आप अगर खुद फोन पे लगे हो, आप अपने बच्चे को नहीं बोल सकते कि फोन पे मतलब कैसे बोल सकते हो, वो तो फटाफट जवाब दे देंगे बच्चे आपको कि आप भी तो फोन पे लगे रहते हो. तो उसके पहले हमें चीजों पे इंप्लीमेंट करना है. अगर हम भगवान के रास्ते में लगे हुए हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, तो बच्चे आज चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखते देखते उनका भी मन करेगा कि हम भी करें, जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं वो करें. तो जो आप करोगे वो वही करेंगे. अब जैसे आज की डेट में जो है वो मोदी जी श्रीमद भगवद गीता का कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने फॉरन जाके फास्ट रखा और बहुत से बच्चों ने भी फास्ट रखना शुरू किया उनको देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो लोगों को इंस्पायर करते हैं. तो जैसा जैसा जो श्रेष्ठ पुरुष करेगा, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे, ठीक है ना. तो जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो जिनको जो जिनको फॉलो करते हैं वो करेंगे ना कि ये देखो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं. हमें कितना गर्वान्वित फील होता है कि भगवद गीता का प्रचार जो प्रसार है वो हर जगह हो रहा है, ठीक है. तो हमें इसी तरीके से भगवान की कृपा से ये कार्य करना है. हरी हरी बोल. नेक्स्ट पढ़ते हैं.
हरी बोल. पॉइंट 6, जैसे अज्ञानी फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को फलों से अनासक्त होकर सामान्य जन को प्रेरणा देने के लिए कर्म करना चाहिए. हरी बोल.
तो जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको ज्ञानी की तरह एक्ट करना चाहिए, अज्ञानी की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए. ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी व्यक्ति वो है जो कार्य करता है लेकिन कार्यों से जुड़ नहीं जाता, वो फलों से जुड़ नहीं जाता. हम क्या करते हैं, फलों से जुड़ के कार्य करते हैं. संसारी व्यक्ति की यही पहचान है. एक्टिविटीज में तो कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है. जैसे आपने कोई भी अगर ऑफिस में काम कर रहा है, उसके अंदर बस ये एक्सपेक्टेशन है कि बस मेरी अप्रिसिएशन हो, मैं बॉस की नजरों में बहुत अच्छा बन जाऊं और मुझे प्रमोशन मिल जाए या मेरी भी इंक्रीमेंट हो जाए. ऐसा जरूरी तो नहीं है. ये तो जो आपके जैसा जैसा आपके नसीब में लिखा है वैसा वैसा हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं है. ये वही बात है कि अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखे कि नंबर मुझे मेरे हिसाब से आने चाहिए. नहीं, हमारा काम है कि हम एग्जाम कैसा दे रहे हैं. नंबर्स पे हमारा कोई राइट नहीं है. कभी हमारे नंबर कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, ये टीचर पे डिपेंड करता है. और जितने हमें मिलने हैं वो तो मिलने ही, ठीक है. तो हमें प्रयास पे इफेक्ट करना है, जो फल है उस पे नहीं उम्मीद करनी. जो फलों पे रहेगा वो हमेशा दुखों में रहेगा, क्योंकि फलों की एक्सपेक्टेशन कर फलों से जुड़ना मतलब दुखों का घर, ठीक है. आज की डेट में हो सकता है आपको सुख भी मिल जाए, फलों आपके मन के मुताबिक अगर रिजल्ट आ गया ना तो आपको सुख भी मिल जाए, लेकिन आप हमेशा सुख और दुख में रहेंगे. और हमने फर्स्ट पॉइंट में यही समझाया कि जो इंसान फलों से जुड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, वो बंधन में बन जाएगा. तो हमें अपनी ड्यूटीज करनी है, ड्यूटीज भगवान को समर्पित करनी है. जो इस तरीके से करेगा उसके लिए वो ज्ञानी है, और जो इस तरीके से नहीं करेगा और संसारी ढंग से करेगा, फलों से जुड़कर करेगा, वो बंधन में फंस जाएगा, वो अज्ञानी है, ठीक है. तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको ज्ञानी की तरह एक्ट करना है, अज्ञानी की तरह नहीं, ठीक है. हरी बोल. नेक्स्ट पढ़िए.
हरी बोल. ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोके नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें भी अपने नियत कर्म में करने में लगाए. हरि बोल.
हरि हरि बोल. जो तो इस रास्ते में आगे बढ़ गए, ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्टेज के अकॉर्डिंगली बोलना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है. मान लीजिए मेरी उम्र है 35 साल, ठीक है, और मेरे जीवन में बहुत सारा ही मैंने मुझे लगा कि भगवान से जुड़ के मुझे बहुत फायदा होगा और मैं इतनी माला करती हूँ, इतना ऐसे एफर्ट्स कर रही हूँ भक्ति के लिए, तो मैं कहूँ कि मेरा 7 और 8 साल का बच्चा भी उतना कर ले, तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि हमने वो अचीव किया है तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी ये करे। पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने किस उम्र में किया था और हमारी स्ट्रेंथ कब बनी है और हमने कब इसका अनुसरण किया, और हम ये एक्सपेक्टेशन बच्चे से भी लगाएंगे कहीं ना कहीं हम गलत है। ठीक है, आपके घर में आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई 20 साल का है, 21 साल का है, आपको 40 साल की उम्र में ये समझ आई कि हमें तो भगवान के रास्ते में लगना चाहिए, और आप उसको दिन रात टोकते रहते हो कि भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, मैं तो इतनी माला कर लेती हूँ, मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, मैं तो ऐसे कर लेती हूँ। तो यानी जो है जिसको ये समझ आ गई है कि इस रास्ते में फायदा है, नो डाउट वो दूसरे का फायदा ही चाहता है, लेकिन दूसरे का फायदा चाहने में उसका नुकसान हो जाता है। जैसे एक एक माँ है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को जो है बड़ा अपने हिसाब से चलाऊं, कंट्रोल करके रखूं, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, एक एक टाइम आएगा कि फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो आपके आपको रिपेल करना शुरू कर देगा कि हमेशा ही ओवर प्रोटेक्टिव होकर रहते हो, मुझे मेरी लाइफ जीने नहीं देते हो। सिमिलरली ऐसा ही होता है, जब आप भक्ति के रास्ते में हो और आपको पता लग गया कि यहाँ पर फायदा है, तो आपने दूसरों को खींचना शुरू नहीं करना है। ये गोलोक एक्सप्रेस में भैया ने बहुत सुंदर तरीके से हमें हमेशा ये क्लैरिटी दी है, और इस क्लैरिटी को हम यही प्रेयर करते हैं कि संभाल के रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो है वो इस संसार में यही होती है, हम दूसरों को पुश करना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती करनी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारे में और आगे जनरेशन में या दूसरों में एक डिफरेंस आ जाता है। हमें सिर्फ अपने आप पे कार्य करना है, जितना हम अपने आप पे कार्य करेंगे दूसरे अपने आप प्रभावित होंगे और उनकी ग्रेजुअल प्रोग्रेस के लिए कार्य करना है। अगर मान लीजिए बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, वो नहीं आपकी बात सुनते हैं, तो आप उनके लिए सबसे पहले तो प्रेयर्स करिए, दूसरी बात उनको प्रसाद ही खिलाइए। अगर वो प्रसाद ऐसा मानते हैं कि हम भोग लगा के नहीं खाना चाहते, तो आप उनको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रसाद खिलाइए उनको। ठीक है, भगवान को अर्पित किया हुआ ही खिलाइए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब भगवान को अर्पित किया हुआ खिलाओगे तो उनका मन वैसे ही काफी हद तक परिवर्तित हो जाएगा, जब वो आपके आचरण को देखेंगे तभी वो परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे एक इंसिडेंट भी अपना याद है कि जब मेरे हस्बैंड जो थे वो यहाँ रहते थे गुड़गांव में, तो हम एक एक्टिविटी करते थे, वो क्या थी, मैं पठानकोट में रहती थी और यहाँ रहते थे, तो हम एक एक्टिविटी करते थे, हम कोई ज्ञानी तो थे नहीं तब, लेकिन स्टिल हम एक एक्टिविटी करते थे जिससे जो था एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता था। हमने कुछ हनुमान चालीसा पढ़ लेनी, या फिर मैंने भगवद गीता में क्या समझा है वो थोड़ा सा 5-10 मिनट शेयर कर लेना, तो इससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमें दूसरे को नहीं समझाना, दूसरे की कैपेसिटी के अनुसार जो है हमने कार्य करना है और बात करनी है, जिससे वो एजिटेट ना हो और उसको सुख मिले, शांति मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भगवद गीता में। कोई अगर पीएचडी का स्टूडेंट है, वो नर्सरी के बच्चे को पीएचडी वाली बात नहीं बता सकता, उसको अपने अपने लेवल को थोड़ा नीचे लेके आके नर्सरी के बच्चे तक की बात करनी पड़ेगी। पीएचडी की बात करेगा तो वो करोगे तो वो एजिटेट हो जाएगा, वो कहेगा कि मम्मा पता नहीं क्या बातें करती है। ठीक है ना, तो अब अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, फ्रेंड जो बच्चे हैं, तो हमें उनके लेवल के हिसाब से, उनकी दिनचर्या के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से उनको एक्टिविटीज अलॉट करनी है, अपने हिसाब से नहीं चलना, अपने मन के हिसाब से नहीं चलना। भक्ति भी मन के हिसाब से नहीं होती है, भक्ति भी वैसे की जाती है जैसे मैं भगवान निर्देश दे रहे। ठीक है, हरि बोल। नेक्स्ट वीडियो
हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है और किसी के भी स्वभाव को दबाया नहीं जा सकता। हरि बोल।
हाँ जी, तो कोई भी कार्य होता है ना, कोई भी संसार में कार्य होता है, वो त्रिगुणी माया से होता है। त्रिगुणी माया क्या है? 3 modes of material nature, 14 chapter, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण और तामसिक गुण और राजसिक गुण की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमारी एक बेसिक नेचर बनती है। वो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो वर्ण डिस्क्राइब होता है। कोई मतलब हमने 4 वर्ण में भगवान ने बांटा हुआ है, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव और शूद्र। ठीक है, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव और क्षत्रिय ब्राह्मण, ठीक है ना, ये चार वर्ण होते हैं। तो बेसिकली ये उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली होता है। अब जैसे इनको अगर हम साइड पे रख दे तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें कि अगर कोई टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, टीचर बहुत अच्छा है, उसके अंदर टीचिंग के बहुत अच्छे स्किल्स है, वो त्रिगुणी माया के प्रभाव से ही आते हैं। टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो टीचिंग करता है, तो वो अगर उसको ये बोला जाए कि भाई तुम तो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते, हो सकता है तुम टीचर बहुत अच्छे बन जाओ, लेकिन तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए। क्या वो इंजीनियर बन के खुश रहेगा? उसको टेक्नोलॉजी नहीं भाती, उसको नहीं अच्छा लगता टेक्नोलॉजी, उसको दूसरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, दूसरे की पढ़ाई में उसकी ग्रोथ अच्छी लगती है, उसको वो अच्छा लगता है। लेकिन हम जो आज की डेट में जो भी कार्य करते हैं वो दूसरों को देख के कार्य करते हैं। अगर फिर अगर हम ये बात करें कि अगर जो एक सिंगर है जैसे लता मंगेशकर जी हैं, वो सचिन तेंदुलकर की एक्टिविटीज करते, क्या वो सक्सेसफुल हो पाते? नहीं। हर जीव की एक अपना एक एप्टीट्यूड है, अपनी एक, भगवान ने उसको एक स्किल दिया है, उसको एक बेसिक नेचर दी है जिसके हिसाब से वो कार्य करेगा। अगर वो उस हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। हमें किसी को देखकर अपने भाव नहीं जो है वो ऐसे बना लेने चाहिए कि वो वैसा कर रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आज की डेट में ये भी आ रही है कि हम किसी को देखकर वो कार्य कर लेते हैं, हमें अपना एप्टीट्यूड ही नहीं पता होता, क्योंकि इंसान के पास से ये समय नहीं है जानने के लिए कि वो क्या चाहता है, वो अपने अंदर क्या है उसके चल रहा है, वो देखने के लिए समय नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को देखता रहता है और किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें ज्यादा चीजें आ रही है वो देखता रहता है, और इन फ्यूचर फिर उसको क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन। तो हमेशा अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। भगवान ने ये भगवद्गीता में श्लोक क्यों दिया? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अर्जुन का जो बेसिक नेचर था वो क्षत्रिय थे, वो सोल्जर थे। सोल्जर की अलग तरीके से ड्यूटीज होती हैं। अगर वो सोल्जर जो है वो ये कहे कि मैं ना दान पुण्य लेकर जो अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, क्या वो सही है? नहीं। वो क्षत्रिय है उस समय पे, वो सोल्जर है, उसका धर्म है कि अपने देश की रक्षा करनी, तो वो उसी मार्ग में ही अपना उद्धार प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई किसी को कन्विंस बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो करे ना। जैसे हमारे गोलोक एक्सप्रेस में भी अलग अलग टीम्स डिवाइड है, कोई कोई करता है रिव्यूज की सेवा, कोई भगवद गीता को आगे प्रचार करने की सेवा, कोई किसी को कन्विंस करने की सेवा, कोई भजन गाने की सेवा। हर किसी की सेवा अलग है। क्यों है? क्योंकि हर किसी के स्किल्स अलग है और अपने स्किल्स के अनुसार ही हमें भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। अपने स्किल्स के अनुसार हमें जो है वो अपने रोज के कार्य भी करना चाहिए और वही अपना करियर भी चूज करना चाहिए ताकि हमें खुशी मिले, वो हमारे दुख का कारण ना बन जाए जो हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है। हरी बोल। नेक्स्ट।
हरी बोल। पॉइंट 9, हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है और जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है। इसी कारण व्यक्ति बिना इच्छा के भी पाप कर्मों की ओर आकर्षित हो जाता है। हरि बोल।
हरि हरि बोल। एक चीज पिछले श्लोक में ये है, भगवान कह रहे हैं उसमें दमन करने से क्या भाव है, तो उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज हमने रखनी है कि सप्रेस नहीं करना है और जो भगवान ने कार्य दिए हैं उस हिसाब से करना है। अब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ये हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम है, ठीक है, कामना सबसे बड़ा शत्रु यही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मन में जो कामना आती है उसको वो पूरे करना चाहता है। व्यक्ति अलग अलग ढंग से कामनाएं रखता है अपने जीवन में। किसी के मन में पैसे की कामना होती है, किसी के मन में अपने वैभव की कामना होती है, मेरे को सम्मान बहुत मिले, मेरी मान प्रतिष्ठा बहुत मिले, तो ये कामना जो है वो उसमें आसक्त हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? कामना है। क्योंकि कामना के बारे में, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं कि ये कामना मेरी पूरी हो जाए। जैसे किसी की गाड़ी अच्छी रखने की कामना है, वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, फिर ज्यादा ज्यादा सोचने से उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वो चीज कर नहीं पाता या फिर उस चीज के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और क्रोध का कारण बन जाती है। कैसे? मान लीजिए किसी ने कार ली, ठीक है, अब पहले तो ये कार लेनी है उस पर चलते हैं, कार लेनी है उसके बारे में व्यक्ति सोच रहा है। अब उसको अगर कार नहीं मिली तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अगर उसने कार ले ली और उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना और उसमें अटैचमेंट क्रिएट कर लेनी, ज्यादा सोचते हैं ना कम किसी चीज के बारे में, इवन कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत सोचते हैं, कि आप एक यही एग्जांपल ले लो कि आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो बहुत ज्यादा, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है तो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आपकी जो कामना थी वो पूर्ण नहीं हुई। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कामनाएं रखेगा और वो उसको मीट नहीं करेगा तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। और भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा जो है वो शत्रु है हमारा, कामना। क्यों कामना शत्रु है? क्योंकि वो क्रोध क्रोध को उत्पन्न करता है, और क्रोध को तो उत्पन्न करता ही करता है, और साथ में पाप में कर्म भी करवा देता है। मान लीजिए किसी के अंदर धन एकत्रित करने की बहुत बड़ी इच्छा है, वो धन बहुत एकत्रित करना चाहता है लेकिन वो इतना इकट्ठा नहीं करना कर पा रहा, लेकिन फिर वो गलत गलत तरीकों से धन इकट्ठा करने का प्रयास करेगा तो पाप में कर्म हो गए। अगर आपके अकॉर्डिंगली किसी ने कोई कार्य नहीं किया, आपको क्रोध आ गया तो आपने किसको किसी के ऊपर वायलेंस क्रिएट कर दी तो वो पाप में कर्म हो गया। किसी से आपको बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपकी कामना थी आपको रिस्पेक्ट मिले वो नहीं मिली, तो आप किसी को कड़वे शब्द बोल दोगे तो वो क्या है, ये क्रोध का भी कारण बनती है और इससे पाप भी जन्म लेता है। तो इसको हमने हराने का प्रयास करना है। कैसे हराएंगे? हमें भगवान नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें डिस्कस कर रहे हैं। हरि हरि बोल।
हरि बोल। पॉइंट 10, आत्मा को इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर दिव्य बुद्धि से मन को वश में करके आध्यात्मिक शक्ति से हमें इस काम रूपी शत्रु को परास्त करना चाहिए। हरि बोल।
हरि हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप को आत्मा मानो। अब हर व्यक्ति हर जीव अपने आप को आत्मा तो ऐसा सुन के तो आत्मा मान नहीं सकता, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं आपको जितनी मर्जी बारी बोलूं आप आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो, आप अपने आप को आत्मा कंसिडर कर ही नहीं पाओगे। शरीर से सारा जुड़े हुए आत्मा कहाँ से समझ पाएंगे, सारा तो हम शरीर के लिए कार्य करते हैं, तो आत्मा को समझ पाना मुश्किल है। लेकिन जो प्रैक्टिसेस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, उसके अनुभव में आना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं कि वो आत्मा को पोषित कर रहा है, फूड फॉर सोल क्रिएट कर रहा है। तो जब वो फूड फॉर सोल क्रिएट करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है, क्रोध में फर्क आता है, हर चीज में फर्क आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन इंद्रियों को अलग मानकर फिर चलते हैं। वो अभी पता ज्ञानी रूप से नहीं आया हमारे अंदर, लेकिन सूक्ष्म रूप से आया है कि और ये चीज को हमने मानना है, ना हम मन है, मन के अकॉर्डिंग तो चलना नहीं है, ना हम बुद्धि है और ना हम इंद्रिय है, हम तीनों से अलग है, हम आत्मा है। व्यक्ति को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो आत्मा है, वो इंद्रियों मन और बुद्धि से अलग है, वो दिव्य बुद्धि से मन को वश में करके। दिव्य बुद्धि को मन में कैसे वश करेगा? दिव्य बुद्धि कैसे आएगी? अपनी बुद्धि हटेगी तो दिव्य बुद्धि आएगी। अभी क्या है, हमारी बुद्धि पॉल्यूटेड है क्योंकि संसार की बातें चल रही है। दिव्य बुद्धि आएगी जब हम सत्संग साधना सेवा करेंगे तो दिव्य बुद्धि आएगी, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे दिव्य बुद्धि आएगी। तो जितना जितना भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, और उसी बुद्धि जो दिव्य बनी है उससे भगवान हमें विल पावर देंगे, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देंगे, अपनी माला जाप करेंगे हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और जिससे हम काम रूपी जो कठिन शत्रु है उसका अंत करने का प्रयास करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है कामना को खत्म करने के लिए। अदरवाइज हम अपनी अगर कहें कि अपनी बहादुरी से कामनाओं को खत्म कर ले, वो कभी भी नहीं होगा। कामना को मॉडिफाई करा जा सकता है, भगवान की शरण में लेके जाके कामना खत्म नहीं होती, और वो मॉडिफाई तभी हो सकती है जब हम भगवत आश्रित रहे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी तरफ से यही, और अब हम चलते हैं हमारे प्यारे बड़े प्यारे डिवोटी के पास, अंशिका जी के पास। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल नताशा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल सत्संग लगा, सुन के बहुत ही मजा आया। फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हमने चैप्टर 3 का कर्म योग समझा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है, ये बहुत ही वंडरफुल श्लोक है, क्योंकि दिस बेसिकली काइंड ऑफ डिटरमाइंस आवर होल लाइफ। अगर हम कर्मयोग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स, तो हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई विल टेल यू सम पॉइंट्स जो मैंने सत्संग से सुने, एंड देन विल गो टुवर्ड्स रिव्यू। तो पहले हमने सीखा पॉइंट 1 में गुड बैड एंड दिव्य कर्म। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो ऑफकोर्स हमें बुरे जो उसके रिजल्ट हैं वो भुगतने पड़ेंगे. अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर हम बन जाते हैं, हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं. उसके बाद हम हमें लगता जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है तो हमें दुख हो जाता है. तो हम हमें ये सीखा कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, पर अच्छे कर्म के साथ साथ भगवान को जोड़ना है, क्योंकि जब हम भगवान को जोड़ते हैं तो वो दिव्य कर्म बन जाते हैं. एंड दिव्य कर्म जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, एंड ऑल्सो वो हमें दुनियादारी से दूर लेके जाते हैं. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी फैमिली से प्यार मत करो और अपनी फैमिली के लिए कुछ मत करो. हम ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए करो, लव देम, पर उन्हें इस भाव से देखो कि इनके अंदर भी भगवान है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये समझा कि हम जो भी करते हैं, जो भी घर में नई चीज लाते हैं, जो भी हम खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो हमें उसे भोग लगा के खाना चाहिए, पीना चाहिए, यूज करना चाहिए. अब आप जैसे अगर आप यूज करो, जैसे आपके घर में नए फ्रूट आए तो आप भोग लगा के उसे यूज करो. एंड फिर हम जब एक एक्सक्यूज बनाते हैं, एंड मैं कह रही थी कि मैं भी ये एक्सक्यूज पहले बहुत बनाती थी कि मैं हर बार भोग क्यों लगाऊं, कि हर बार मैं पानी पीऊंगी तो भोग लगाऊंगी, हर बार खाना खाऊंगी तो भोग लगाऊंगी. तो हम हर बार, जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई आपको कुछ देता है तो आप हर बार 5 घंटे थोड़ी ना बैठ के थैंक यू बोलते हो, बस थैंक यू बोल देते हो. वैसे ही भगवान को, भगवान ने हमें ये नई चीज दी है, थैंक यू भगवान. बस ऐसे बस 8 मिनट आंख बंद करके 2 मिनट भी अगर हम भगवान को थैंक यू बोल देंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे. फ्रेंड्स, अगर हम भोग नहीं लगाते, फ्रेंड्स अगर हम भोग नहीं लगाते तो क्या होता है कि ये हम जो यूज करते हैं, जो भी हमारे पास आया, तो वो पाप ग्रहण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक हमने हमारे पास खाना आया घर पे, और अगर हमने भोग नहीं लगाया तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि भगवान को थैंक यू नहीं कह रहे, तो हम वी आर बेसिकली स्टीलिंग फ्रॉम गॉड. उसके बाद हम पाप ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बिकॉज इट्स बीन पास्ड डाउन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू पर्सन, एंड उनकी कैसे फीलिंग थी उस टाइम जो भी था, तो दैट्स बीन पास्ड डाउन, एंड अब हम उस नेगेटिविटी को ग्रहण कर रहे हैं. बट जब हम भगवान को थैंक यू कर देते हैं तो हम चोरी भी नहीं करें, एंड भगवान हमें नेगेटिविटी भी ग्रहण करने नहीं देते. फिर फ्रेंड्स क्या है कि हमें मन के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करने हैं. हम बहुत बार कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा पिज्जा खाने को मन कर रहा है, मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा है. फ्रेंड्स ऑफ कोर्स हमें ये लगेगा क्योंकि हम अपने मन के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, मन के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं, पर हमें अपने मन के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जीना, हमें अपने मन के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करने हैं. फ्रेंड्स हमें जो है अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर्म करने हैं, क्योंकि शास्त्रों में हमें पूरा ज्ञान दे दिया होता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर हम कभी शास्त्रों को अच्छे से डीपली समझ में नहीं पाते. पर शास्त्रों में हमें बताया होता है कि हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, एंड हम कैसे जिएंगे, सो व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंस टू दैट, हम ऐसे जिएंगे, सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस टू दैट. सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग कर्म ना करें, एंड हम अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें. फ्रेंड्स एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी. अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा दिव्य कर्म, तो वो कर्म काउंट नहीं करेगा क्योंकि हम उसे ग्रीडीनेस के भाव से कर रहे हैं. सो जब हम डिवोशन करते हैं तो हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले. वी शुड जस्ट बी हैप्पी दैट भगवान ने हमें इतना कैपेबल समझा कि वो हमें ड्यूटीज दे रहे हैं. हमें भगवान को अपनी हर ड्यूटी में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए. तो हमें फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई टेल यू फ्रेंड्स, अगर हम बिना फल की इच्छा से कोई भी काम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, आई विल टेल यू आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी दैट्स मतलब अनअचीवेबल थ्रू एनीथिंग एल्स. फ्रेंड्स एक और चीज है कि अगर हम बिना फल की इच्छा के करेंगे तो फल हमें आएगा ही, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जा रहे हैं एंड आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे वहां पे कुछ मिलेगा, कोई दिखेगा. एंड अगर आपको वहां कुछ मिल गया, वहां कुछ दिख गया, अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी और उन्होंने दे दिया, सो यू आर गोना फील मोर हैप्पियर देन कि अगर आपको पता था हाँ गिफ्ट देंगे, ओके व्हाट सो एवर, तो देन यू आर नॉट गोना बी एज ग्रेटफुल. सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ सो दैट यू कैन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ. नेक्स्ट दो तीन श्लोक में हमने यही डिस्कस किया कि हमारे अंदर इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस मेनी पीपल. सो जैसे माय मदर इन्फ्लुएंसेस मी, आई इन्फ्लुएंस माय ब्रदर, तो हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के इंस्पिरेशन होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इंस्पिरेशन ही कुछ गलत करेगा, जैसे ट्विटर में, यूट्यूब में बहुत सारे टाइम कोई बिग सेलिब्रिटीज गेट कॉट डूइंग स्टफ, एंड वो चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, एंड देन लाइक लोग इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बना देते हैं बिकॉज ये लोग पीपल के इंस्पिरेशन है, दे आर पीपल्स आइडल्स. तो हम बहुत सारे लोगों से फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं. तो हमें जो है क्या करना चाहिए कि अपने आप को पहले सुधारना चाहिए बिफोर वी ट्राई गोइंग बी लाइक आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए. नहीं, हम पहले बोले कि ओ हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए. गोलक एक्सप्रेस की टैगलाइन भी है ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ. तो हमें पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को फिक्स करना है, तब जाके हम दूसरों को जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. एंड आई प्रॉमिस यू फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू थिंक इट्स लाइक दैट और नॉट, बट बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं. सो बेस्ट इज कि हम दूसरों से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो. एंड फ्रेंड्स, हमने एक और श्लोक में ये भी बात की कि हमें अपने आप को किसी से किसी के लिए चेंज नहीं करना है, हमारा जैसा एटीट्यूड है हमें वैसे रहना है. अगर हमें लग रहा है एंड शास्त्र हमें कह रहे हैं कि ये गलत है, देन वी हैव टू चेंज. पर अगर कोई कह रहा है कि योर ड्रीम्स आर आपके ड्रीम्स गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर वो गलत कह रहा है, देर नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, देर नॉट योर एटीट्यूड, देन यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ. बट अगेन, दिस डज नॉट अप्लाई टू शास्त्र, बिकॉज शास्त्र जो है हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. फ्रेंड्स, एक और चीज हमने कहा कि जिसके पास भी ज्ञान है उसे ज्ञान ही कहा जाता है, एंड उसे किसी से एक्सपेक्टेशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैं जिस लेवल का कर सकती हूँ उस लेवल का मेरा भाई नहीं कर सकता, एंड नताशा जिस लेवल के कर सकते हैं मैं उस लेवल के नहीं कर सकती हूँ, एंड नीलम जी उस जिस लेवल के कर सकते हैं तो कोई और उनके लेवल का नहीं कर सकता. एवरीबडी हैज डिफरेंट लेवल्स, एवरीबडी लर्न्स डिफरेंटली. तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें जो है किसी से एक्सपेक्टेशन होल्ड नहीं करनी है. वी ऑलवेज हैव टू ट्राई टीचिंग पीपल, जैसे बच्चों से कभी कभार हम प्यार से बात कर लेते हैं ना, ओ बी एस यू नो बीबी ऐसे करके बात कर लेते हैं, वैसे ही हमें सबके लेवल देख के उनसे वैसे टाइप की बात करनी चाहिए. समटाइम्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिवोशन एट ऑल, सो वी हैव टू ट्रीट देम लाइक उन्हें कुछ नहीं आता, एंड हमें उन्हें ऐसे तरह से समझाना पड़ेगा कि वो इंटरेस्टेड रहे, एंड हम उन्हें ऐसा ना बोलते कि उन्हें लग रहा है ओ माय गॉश फिर से लेक्चर. तो हमें ऐसे तरह से उन्हें समझाना है. एंड लास्टली हमने समझा कि आत्मा एंड हम आत्मा है, एंड हमें अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है. एंड हाउ कैन वी डू दैट इज थ्रू सत्संग साधना सेवा सदाचार. सो फ्रेंड्स, इस पूरे सत्संग का मैं समरी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम जो करते हैं भगवान को उसमें जोड़ना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, भोग लगा के खाना है, एंड अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है, एंड ये डिफ्रेंशिएट करना कि हम बॉडी नहीं आत्मा है. तो हमें वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम बंधन एज मच एज पॉसिबल. तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रिव्यूज की तरफ. तो पहले हम चलते हैं संगीता जी के पास. हरी हरी बोल संगीता जी. हरी हरी बोल.
हरी हरी बोल. हरी हरी बोल अंशिका बेटा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. थैंक यू नताशा जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू अंशिका बेटा फॉर वंडरफुल लर्निंग्स. आज हमने नताशा जी के माध्यम से ये जो कर्म योग का चैप्टर है इसको समझा है, और गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से हमने भगवत गीता को सार रूप में पढ़ने की चेष्टा की है। आजकल हम वो जो सार रूप में भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसमें बहुत हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। मैं गोलोक एक्सप्रेस से पिछले 6 साल से जुड़ी हूँ और बहुत बार हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है, लेकिन सार रूप में क्या हमारे मेन पॉइंट्स रहते हैं उसको आज नताशा जी ने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है और जो मेरी लर्निंग्स उससे बन पाई हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले नताशा जी ने हमें बताया भगवत गीता के माध्यम से कि हमें कर्म कैसे करने हैं। कर्म हमें भगवान की खुशी के लिए करने हैं और हमें कर्म फलों से अटैचमेंट जो है वो नहीं लगानी है। जनरल बात करें तो आज तक तो हम कर्म सबसे पहले अटैचमेंट के साथ ही करते थे कि मुझे क्या मिलेगा, इसको करने से मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि हमने कर्म फलों से बिना अटैच हुए भगवान की खुशी के लिए कर्म करने हैं, तभी हम जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमने उस गोलोक धाम तक कैसे पहुंचना है उसको हम हासिल कर पाएंगे। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है तो हमें छोटे छोटे त्याग जो है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ तो किस चीज की बात हो रही है, यहाँ हम रोज सुबह 5:30 बजे किस चीज के लिए बैठते हैं? उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए बैठ रहे हैं। माला जाप हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस परमात्मा के घर, अपने असली घर वापिस जा सके। हमें अपने जीवन का लक्ष्य पहले पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना, और उनको प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? कर्म योग के माध्यम से भी कर सकते हैं। अपने कर्मों को भक्ति भाव से करें, फलों से बिना अटैच हुए कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नताशा जी ने भोग का कॉन्सेप्ट बताया कि भोग हमें लगाकर ही खाना खाना चाहिए, हर चीज का भोग हमें लगाना चाहिए। जब हम खाने के बाद अगली स्टेज पर आ जाते हैं तो हमें अपने कर्मों का भी भोग लगाना चाहिए कि हम कर्म किस तरह से करें। हम हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाप से बच जाएंगे। फिर हमने नताशा जी के माध्यम से सीखा कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें धीरे धीरे कुछ बातों का ज्ञान हो जाता है तो हम ज्यादा टोका टोकी ना करें। जनरली अक्सर देखा गया है कि जब हमें किसी बात की नॉलेज हो जाती है तो जो इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं या हमारे कुछ नजदीकी रिश्तेदार या नजदीकी जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसमें हम कुछ ना कुछ टोका टोकी कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, तो हमें उससे बचना चाहिए। उससे रिश्तों में थोड़ा दरार आ जाती है, खाई बन जाती है जिसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर जो होता है वो भी एज के हिसाब से ही दवाई देता है। बच्चे को कम डोज, थोड़ा बड़ा है तो उसको ज्यादा डोज। इसी तरह हमें भी हर एज के हिसाब से, हर स्टेज के हिसाब से कि इसको कितनी दवाई की जरूरत है उतना ही हम ज्ञान दें। किसी को हम मंत्रा बॉक्स दे दें, किसी को हम फेसबुक से जोड़ दें, किसी को हम लाइव सत्संग से जोड़ दें, जितनी अगले की कैपेसिटी है उतना देकर हम उसको भगवत प्रेम की तरफ बढ़ा सकते हैं। और एक जैसे बात बताई नताशा जी ने कि अपने स्वभाव के अनुसार हर व्यक्ति कार्य करता है। पिछले जन्मों के हिसाब से हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, उन तीनों गुणों के हिसाब से ही हमारा हर व्यक्ति का स्वभाव होता है और उसके स्वभाव को पहचानते हुए ही उसके स्वभाव को कभी दबाना नहीं चाहिए। जैसा उसका टेस्ट है उस टेस्ट को उसको हमेशा आगे भी बढ़ाना चाहिए। और फिर बताया हमने आज के सत्संग से सीखा कि जैसे कहते हैं ना कि शीशे पर मिट्टी पड़ जाती है तो हमें अपना ही चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता, इसी तरह हम एक आत्मा हैं और हमारे ऊपर मन, बुद्धि और इंद्रियों पर एक कामना, कामनाओं से हम भरे हुए हैं। हमारे मन में भी हर समय कामना आ जाती है, वो फिर बुद्धि में चली जाती है और हमारी इंद्रियां जो है अनियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए उसको, कामना को कैसे हमने रोकना है, अपनी इंटेलिजेंस की सीट पर भगवान कृष्णा को बिठाना है और मन की लगाम जो है वो भगवान के हाथ में दे देनी है। निरंतर सत्संग, साधना, सेवा से जुड़े रहना है, तभी हमारी बुद्धि में वो प्रकाश आएगा और हम उस लस्ट पर काबू पा लेंगे। हमारे अंदर नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, उन नेगेटिव फोर्स को दूर करने के लिए हमें अपनी डिवोशन की डोजेस को निरंतरता से बढ़ाना पड़ेगा, मन को कभी मारना भी पड़ेगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे मन में वो ठहराव आ जाता है, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, पहले हमें जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम साधना पर फोकस करते हैं तो हमारे जो अंदर के विकार हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे मदर टेरेसा की एक बहुत अच्छी बात लगती है। वो कहती हैं कि मैं तो एक पेन हूँ और भगवान मेरे माध्यम से एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं। तो हम सभी भी भगवान के हाथों में एक पेन है। जैसे जैसे वो हमें दिशा निर्देश दे देते हैं, वैसे वैसे हम अपने कर्मों को करते जाते हैं, और अपने कर्मों को हम भक्ति भाव से बिना अटैचमेंट के करते जाएंगे तो उस भगवत धाम को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल संगीता जी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल आपका रिव्यू लगा, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे कहे जो मुझे बहुत ही इनलाइटन किए, टच किए, एंड आई रियली वांटेड टू शेयर देम। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि कभी कभार हम अपना बेनिफिट देखते हैं कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। एंड आपने मूवीज में भी देखा होगा एंड महाभारत में भी देखा होगा, सब सब जगह, ऑफिस, स्कूल, कहीं पे भी जाओगे तो सब कहेंगे कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, अगर मैं ये करूंगी तो इसमें क्या होगा, कैसे चलेगा ये। तो हमें यही लगता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। ये भाव से कभी कर्म नहीं करना चाहिए। अगेन, फल की इच्छा से हमें कभी भी कर्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो है अपना बेनिफिट छोड़ के ये देखना चाहिए कि अगर आर वी डायरेक्टिंग दिस वर्क टू गॉड। एक और चीज इन्होंने कही कि हम जो है अपने पिछले जन्मों के जो 3 गुण है उससे बंध के इस जन्म में आते हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने 3 गुणों पे जो सात्विक गुण है उसे हावी रखें। उसके बाद जो है जब हम कर्म योग के साथ सुनते हैं तो हम गुड अच्छे कर्म तो करते हैं, उसके साथ साथ जब हम भगवान को जोड़ते हैं तो वो दिव्य कर्म बन जाते हैं। हमें अपनी लाइफ को दिव्य कर्म बनाने हैं। एंड लास्टली आपने जिस जो मदर टेरेसा का कोट बोला कि वो कहते हैं कि वो भगवान के हाथ के एक पेन ही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, भगवान के हाथ के हम पेन ही है एंड हमें भगवान के अकॉर्डिंग कर्म करने चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू आर ओन माइंड्स, क्योंकि हमारे ओन माइंड्स चलते नहीं है। जैसे पेन खुद तो नहीं चलते, कोई उन्हें चलाता है, राइट? तो हमारे खुद के मन तो अच्छे से चलेंगे नहीं, हम हमारे बेनिफिट के लिए कभी नहीं बोलेंगे। बट ये इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान की वाणी को सुनने की कोशिश करें एंड वी नो व्हाट्स बेस्ट फॉर अस। फ्रेंड्स, लेट्स टेक दिस मोमेंट। वैसे तो ये पूरे सत्संग में हम प्रेयर्स कराते जाते हैं कि आई प्रे फॉर यू, बट फ्रेंड्स लेट्स टेक दिस मोमेंट टू डू प्रेयर्स। तो अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी के लिए भी आप प्रेयर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एंड आई विल डेडिकेट 3 मालास फ्रॉम माई साइड। एंड मैं गोलक एक्सप्रेस के सारे मेंबर्स को भी कहती हूँ कि जो भी प्रेयर्स करते हैं उनके लिए डेडिकेट सम पार्ट ऑफ योर माला। एंड आई होप दैट ये प्रेयर्स काम कर जाए एंड वट एवर इज हैपनिंग बिकम्स बेटर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू की तरफ, सुनीता जी के पास। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य सत्संग हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच नताशा जी, आपके श्रीमुख से कर्म योग के बारे में सुनकर मन आनंद विभोर हो गया। और थैंक यू अपना अंशिका बेटे, आपने भी बहुत प्यारे अपने रिव्यूज देखे, ब्यूटीफुल आपकी होस्टिंग, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। आज के चैप्टर्स के बारे में जो मेरी लर्निंग बनी है वो हम जो भी कर्म भगवान की खुशी के लिए करते हैं उतना ही हम संसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। जब हम अपने कार्यों के बीच में भगवान को परम पिता मानते हुए और उनको भगवान भी उससे भगवान भी खुश होते हैं। कर्म तो हमने वही करने हैं जो भगवान ने हमें ड्यूटीज दी हैं, लेकिन वो कर्म हमने निष्काम भावना से बखूबी करने हैं। उसमें किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम बन जाए, शोहरत बढ़े, पैसा मिले। ड्यूटी समझकर ही करना चाहिए कि हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। कर्मों ही का बंधन है जो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों कर्मों के बाद भी हमें जन्म लेना पड़ता है। जैसे जेल में कैदी फंसे होते हैं उसी तरह हम संसार रूपी जेल में कैद हैं। हमें कर्मों के फल के साथ नहीं बंधना, जब कोई कैदी जैसे जेलर के साथ दोस्ती बढ़ाता है, यानी अपने अच्छे कर्मों से उसको खुश करता है, हमें भी उस तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान से किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए अपने कार्य को सुंदर ढंग से सच्चाई से करते हैं, तो हमारी संसार रूपी जेल की सजा, जो बार बार जन्म मरण का फेर है, मुक्ति मिलती है। जैसे युद्ध में जब अर्जुन अपने सारे रिश्तेदारों को देखकर घबरा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, तो कृष्ण भगवान ने यही कहा कि तुम कौन होते हो, ये मैंने निर्धारित किया है कि तुम युद्ध करो, परिणाम क्या होगा ये मत सोचो। तो अर्जुन ने पूरी निष्ठा से युद्ध लड़ा और कौरवों को पराजित करा। उन्होंने ये कर्म केवल और केवल कृष्ण भगवान जी के कहने पर ही किया। हमें किसी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस फल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, वो फल खट्टा होगा या मीठा, इसका निष्कर्ष निष्कर्ष करने का केवल कृष्ण भगवान ही है जो इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सो हमें कर्मों को 100 रूप से पूर्ण रूप देना चाहिए, अपनी तरफ से 100% देना चाहिए किसी भी कार्य को करने में, उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि हमें जो भगवान ही इसका फल देंगे। तभी भगवान कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं, जब हम कोई भी काम अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से और सच्चाई से करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान का भी स्मरण नहीं होना चाहिए। इस संदेश को घर घर पहुंचाया है गोलोक एक्सप्रेस ने, कैसे कि हमें भगवान का डेली जो नाम जाप, डेली सत्संग और चैंटिंग के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहने से हम कैसा भी कर्म कर रहे हों, लेकिन हमेशा भक्ति की चेतना में ही रहते हैं, तो हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं जब हम भक्ति और चैंटिंग में रहते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने जैसे हमारे इंद्रियों को भी हम खुश करने के लिए जो कार्य करते हैं, वो भी हमारा जो कार्य है वो भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि हमने इंद्रियों को खुश करा है, अपने आप को खुश करा है। हमने किसको खुश करना है? हमने भगवान को खुश करना है। हमने कोई भी जो चीज है, जो भोजन ग्रहण करना है, सबसे पहले हमने भोजन भगवान को अर्पित करना है, तभी वो भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है और हमारा जो जितनी नेगेटिविटी है वो हमारी उस प्रसाद के रूप में लेने से हमारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। तो इस तरह से मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का, रूपाली जी का, निधि जी का व रूपाली जी का, निधि जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके द्वारा हमें भगवद गीता समझने का और इसको अपने जीवन में उतारने का मौका मिला। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू अंशिका बेटे, थैंक यू लोकेन, थैंक यू, हरि बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगा। आई रियली रियली एंजॉयड इट एंड आई हैड सो मच फन आपको सुन के। एंड आपने एक पॉइंट कहा कि जब हम चैंटिंग करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो जब हम ये सब करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना कि हम चाहे भगवान से हम चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, हम हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। एंड जब हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं, हम समझ पाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चैंटिंग करें, हमारा मन लगे ना लगे, सत्संग साधना सेवा सदाचार करें, क्योंकि जब हम ये सब करते हैं तो भगवान हमें खुद डायरेक्शन देते हैं। जैसे अगर हमें कभी कभार लगता है कि हमें पता है, पर अगर हम मैप्स देख लेते हैं तो मैप्स हमें खुद डायरेक्शन देता है। वैसे हमें लगता है कि हम तो ठीक है, हमें डिवोशन की क्या जरूरत है, नहीं, पर अगर हम डिवोशन करते हैं तो भगवान हमें खुद डायरेक्शन देते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग्स, आपने सारे पॉइंट्स स्पॉट ऑन बोले, बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, लेट्स एंड दिस सत्संग ऑफ विद अ वंडरफुल भजन। तो चलते हैं गीता जी के पास। हरी हरी बोल गीता जी, हरी हरी बोल।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सो मच अंशिका जी। सबसे पहले तो मैं श्री हरि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी, श्री राधा जी को कोटि कोटि प्रणाम, और नताशा जी, आज जो आपने कर्म योग की जो चैप्टर था उसकी जो समरी दी, बहुत ही आनंद आया। और कंक्लूजन रूप में जो है वो यही हमारे सामने आया है कर्म की महानता के बारे में, कि हमारे समस्त कर्म जो है वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ना होकर भगवान के लिए होने चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा जो है वो मेन मोटिव है। हम इसी के लिए जो है वो इस संसार में आए हैं। इस संसार में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये जो है ये संसार जो है ना वो हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। हमारा परमानेंट हाउस क्या है? गोलक धाम। तो गोलक धाम की प्राप्ति हमें कैसे होगी? गोलक धाम की प्राप्ति होगी जब हर समय हर क्षण जो है वो हम सत्संग साधना सेवा और सदाचार को जो है वो करते रहेंगे। अपने कर्मों को जो है वो हमने दिव्य कर्म जो है वो बनाना है। जैसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुण हैं, इसके बारे में हमें जो है वो बताया गया, लेकिन ये तीनों गुण ही जो है वो तब भी जो है वो बेड़ियां हैं। जैसे कि बोलते हैं लोहे की जंजीरें, वो भी बेड़ियां, उसके बाद चांदी की बेड़ियां आ गई, तो वो चांदी की जो जंजीरें हैं वो भी बेड़ियां, सोने की जंजीरें हैं वो भी बेड़ियां, लेकिन इन तीनों कर्मों से, इन तीनों जंजीरों से जो है वो हमें ऊपर उठकर जो है वो किस रास्ते पर चलना है? दिव्यता के रास्ते पर। प्रभु जो कुछ भी है वो सब आपका, बस आपको खुश करने के लिए जो है वो मैं हर कर्म कर पाऊं। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर कर्म योग था, कर्मों की लीला के से संबंधित ही आज मैं आप सबके सामने जो है वो कलयुग में है कर्मों का युग, इस भजन को जो है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। नगदी का है खेल जहां में, एक पल दे दूजे पल ले। नगदी का है खेल जहां में, एक पल दे दूजे पल ले। एक हाट बनिए की जग है, सौदा खरा खरा कर ले। एक हाट बनिए की जग है, सौदा खरा खरा कर ले। जैसा जमा कराएगा ऋण, वैसा ही तो पाएगा। जैसा जमा कराएगा ऋण, वैसा ही तो आएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ये जग है कर्मों की भूमि, जीता और कोई हारा। ये जग है कर्मों की भूमि, जीता और कोई हारा।
जिसने मन के अहम को मारा बनता भगवान का प्यारा, जिसने मन के अहम को मारा बनता भगवान का प्यारा, जिसने जीता मन को उसको जगना कभी हराएगा, जिसने जीता मन को उसको जगना कभी हराएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कलयुग है कर्मों का युग जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, मेवे के बदले में मेवा सेवा का बदला सेवा, देगा सुख आराम मिलेगा देगा दुख आफत लेगा, मेवे के बदले में मेवा सेवा का बदला सेवा, देगा सुख आराम मिलेगा देगा दुख आफत लेगा, नेकी का बदला नेकी से नेकी का बदला नेकी से, जग में प्राणी पाएगा अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कलयुग है कर्मों का युग जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, दूजे के घर आग लगा कर मद में प्राणी तू फूला, दो दिन का घर चाकी चूला माया के भ्रम में भूला, दूजे के घर आग लगा कर मद में प्राणी तू फूला, दो दिन का घर चाकी चूला माया के भ्रम में भूला, एक हवा के झोंके में तिनका सा तू उड़ जाएगा, एक हवा के झोंके में तिनका सा तू उड़ जाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कलयुग है कर्मों का युग जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, धोखा दगा फरेब का पहरा आज लगा घर घर डेरा, मानवता को भूल के प्राणी करता है तेरा मेरा, धोखा दगा फरेब का पहरा आज लगा घर घर डेरा, मानवता को भूल के प्राणी करता है तेरा मेरा, अंधकार में भटका प्राणी अंधकार में भट नेक राह कब आएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हाथी घोड़ों का ना लेखा, एक एक तिल तुलते देखा। हाथी घोड़ों का ना लेखा, एक एक तिल तुलते देखा। सच का मोल मिले ना जग में, झूठ सदा बिकते देखा। ऐसा हाल रहा तो सच फिर ढूंढे से ना पाएगा। ऐसा हाल रहा तो सच फिर ढूंढे से ना पाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। जो गैरों के घर को बसाए, उसके घर खुशियाँ आए। औरों पर जो वार करेगा, वो वैसा ही फल पाए। जो गैरों के घर को बसाए, उसके घर खुशियाँ आए। औरों पर जो वार करेगा, वो वैसा ही फल पाए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं कल पाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। हरि हरि बोल हरि हरि बोल
हरि हरि बोल हरि हरि बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा ओवरऑल आज का सत्संग, मजा आ गया आज का सत्संग सुन के। कर्मों के माध्यम से कैसे भगवान के साथ जोड़ लगाना है हमने समझा, और कलयुग में क्या हालात होंगे ये गीता जी ने अपने भजन में हमें बताया। गीता जी आज का भजन भी टॉपिक से रिलेटेड था, बहुत आनंद आया। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन नताशा जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुन के। राशि जी का भी मैं थैंक्स करती हूँ, बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने एक एक करके जो पॉइंट्स पढ़े, बहुत ही आनंद आया वो भी देख के। अमेजिंग होस्टिंग अंशिका जी, आपने पूरे का पूरा सत्संग समराइज किया, बहुत ही अच्छा लगा। संगीता जी और सुनीता जी के प्यारे थॉट्स सुने। शंख सेवा के लिए विकास जी का भी थैंक्स, क्योंकि शंख प्योरिटी का प्रतीक होता है, और जब पहले शंख बज जाता है तो लगता है कि अब सत्संग भगवान की कृपा बरस गई है और सत्संग बहुत स्मूथली चलेगा। अंत में मैं काजल जी का भी थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने पूरे सत्संग को मैनेज किया, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। अब कल हम सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम पे आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे एक नए विशेष सत्संग को लेके। नरसिंह चतुर्दशी है कल, नरसिंह चतुर्दशी के विशेष सत्संग को लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।